ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। इसी तिथि पर 1965 में श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका की भूमि पर या धरती पर या मिट्टी पर चरण कमल अपने रखे थे। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। एक भजन श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में ऐसे है कि यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो, कि श्री गौरंग महाप्रभु यदि नहीं होते तो फिर क्या होता। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि इस कलयुग में इस संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए प्रकट हुए थे। और ये संकीर्तन आंदोलन क्या है? ये वो आंदोलन है जिसमें कि पात्रता और अपात्रता का विचार न करते हुए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस दुनिया के इस युग के पापी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो सकता है। वही लक्ष्य जो कि सत्य त्रेता और द्वापर युगों में बड़े कठिनाई से अनेक वर्षों के तपस्या के पश्चात प्राप्त होकर हो सकता था, वो इस कलयुग में इतने सहज ही प्राप्त हो सकता है। बल्कि जो वृंदावन का प्रेम, कृष्ण प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु बांटने आए थे, वो सत्य त्रेता और द्वापर में भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हम कलयुग के निवासी कितने भाग्यशाली हैं। भले यहाँ पे कष्ट कितने हों, कलयुग के दुर्गुण कितने हों, परंतु ये एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत, कि केवल श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन करने से हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। और महाप्रभु का विचार ऐसे नहीं था कि केवल हिंदुओं को ये संदेश मिलना चाहिए और केवल जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन केवल ये भी नहीं है कि केवल भारतीयों को ये मिलना चाहिए, नहीं, समस्त विश्व के लोगों को ये मिलना चाहिए, ऐसे महाप्रभु का आंदोलन है। और केवल इतना नहीं कि केवल मनुष्यों को मिलना चाहिए, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़ों को भी मिलना चाहिए। इसलिए महाप्रभु के बारे में महाप्रभु ने स्वयं कहा, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भे मोर नाम, कि इस पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम आदि हैं उन सब में एक दिन मेरे शुद्ध नामों का प्रचार होगा, कि ध्वनि गूंजेगी इन पवित्र नामों की। तो जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, दो चार सदियां भी बीत गईं, परंतु चैतन्य महाप्रभु का दिव्य संदेश भारत भूमि के बाहर नहीं पहुंचा था। हाँ, 1996 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, उसे उन्होंने कनाडा देश में भेजा, परंतु वो केवल ग्रंथालय में रह गया, अधिक प्रचार उसका हुआ नहीं। कई वर्षों बाद श्री उनके पुत्र श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके दो शिष्य जो सन्यासी थे वो लंदन गए, परंतु थोड़े समय के बाद लौट कर आए, अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कैसे पूरा होता, कैसे सफल होता? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा ही ये संभव हुआ। पहले अनेक वर्षों तक जो केवल भारत भूमि के सीमाओं तक सीमित थी, अब वो अमेरिका, यूरोप सब जगह फैल गई केवल एक वृद्ध व्यक्ति के कारण। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सब जगह फैलाने में यश प्राप्त किया, इसलिए हम कह सकते हैं यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो। यदि प्रभुपाद जी न होते तो यहाँ पे क्या होता, हम लोग आज यहाँ पे नहीं बैठे होते, हम में से अनेक शायद कोई और भौतिक कार्यों में लगे हुए होते। कौन आके समझाता हम सबको इन अनमोल ग्रंथों के द्वारा, इस संस्था के द्वारा कि श्री कृष्ण कौन है, उनकी भक्ति क्या है, वृंदावन धाम क्या है, मनुष्य जीवन की विशेषता और सफलता क्या है। हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाते। श्रील प्रभुपाद जी को वैसे तो ये आदेश मिला था कि तुम विदेशों में जाके अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करना। उस समय श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में थे और नवयुवक थे, करीब 26 की आयु थी उनकी मात्र। और उस समय उन्होंने सोचा कि पहली बार हमें साधु से मिल रहे हैं और वो हमें सारे जीवन भर का एक आंदोलन या आदेश दे रहे हैं, परंतु मैं गृहस्थ हूँ, मेरे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं कैसे जा पाऊँगा, ये कार्य इतना बड़ा कार्य जो है मैं कैसे संपन्न कर पाऊँगा। फिर भी श्रील प्रभुपाद इस आदेश को कभी भूले नहीं, एक बहुत ही सुदृढ़ भक्त बन गए। वैसे तो बचपन से ही वो भक्त थे, कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं श्रील प्रभुपाद जी, फिर भी उन्होंने अपने सुदृढ़ भक्ति को और भी तीव्रता से प्रकट कराया अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी। अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो गौड़ीय मठ के कार्यक्रमों में शामिल होते, भजन कीर्तन कथा में, और उनके जो गुरु भाई थे और उनके गुरु महाराज श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उनको बहुत मानते थे। जब उनके गुरु भाइयों ने श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाकर कहा कि अभय बाबू को आप संन्यास दिलाइए, तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं, अभी नहीं, ये आगे चल के बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए कोई जल्दी नहीं है, वो अपने गृहस्थ जीवन में अब है तो कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे अनेक वर्ष बीत गए। जब श्रील प्रभुपाद जी की आयु कल लगभग 50 की थी तब उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपने व्यवसाय आदि को त्याग दिया। व्यवसाय में तरह तरह के नुकसान होने लगे और आगे नहीं चला पाए व्यवसाय। ऐसे जब बार बार होता गया तो उन्होंने ये सोचकर त्याग दिया अपना व्यवसाय कि यही कृष्ण की इच्छा है, श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करूं, जो आज तक मेरे गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों के कारण मैं पालन नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं कर पाया। फिर वो वृंदावन चले गए, इधर उधर जाके अंततः राधा दामोदर मंदिर में दो कमरे प्राप्त करके वहां श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अनुवाद करने लगे। ऐसे 8-10 वर्ष बीत गए। 59 वर्ष के आयु में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया, इसकी चर्चा हम 2-3 हफ्ते पहले कर चुके हैं। तो संन्यास आश्रम को तो स्वीकार किया उन्होंने, वृंदावन में रहे और अपने ग्रंथों को छापना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं विदेश जाऊंगा तो अंग्रेजी में कोई किताबें मेरे साथ नहीं होंगी तो कैसे प्रचार करूंगा, लोगों को समझाऊंगा कैसे। तो पहले तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध का अनुवाद किया, वैसे कई छोटे और किताबों की रचना भी उन्होंने की, जैसे कि अन्य लोकों में सुगम यात्रा इत्यादि, और बैक टू गॉडहेड ये पत्रिका भी छापना शुरू कर दिया। परंतु जब श्रीमद् भागवत को छापना शुरू कर दिया तब ये बड़ा काम था, क्योंकि एक ऐसे बड़े किताब को छापना ये कोई साधारण बात नहीं थी। धन की आवश्यकता थी, फिर मुद्रणालय में जाके तो बहुत समय के बाद उसको ठीक ठाक करके छापने की तैयारी करते थे। आजकल तो किताबें छापना ये काफी आसान हो चुका है, बड़े कम समय में किताबें छापी जाती हैं, कंप्यूटर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, परंतु उस समय ऐसे नहीं था। उस समय काफी समय लगता था एक पुस्तक छापने के लिए, तो ऐसे अनेक महीने लगे प्रभुपाद जी को केवल एक किताब के अनुवाद करने के बाद उसको छापने के लिए। किसी न किसी तरह से अपने बैक टू गॉडहेड पत्रिका को बेच के थोड़ा बहुत धन एकत्र करते, इधर उधर कोई छोटा मोटा दान दे देता, तो ऐसे उन्होंने छाप लिया पहला, फिर दूसरा स्कंद भी छापना शुरू कर दिया, और ऐसे करके उनके तीन किताबें छपी। बड़े मुश्किल से प्रभुपाद ऐसे छाप पाए इन किताबों को, और फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मेरे पास कोई पत्रिकाएं हैं और कम से कम ये तीन किताबें हैं जिनके साथ मैं अमेरिका जा सकता हूं। परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे, केवल सपने देखने से तो हम अमेरिका पहुंच नहीं सकते। केवल हम वृंदावन में बैठेंगे कि काश मैं अमेरिका चले जाता प्रचार करने के लिए, तो इतने में तो थोड़ी आदमी अमेरिका पहुंच सकता है। अमेरिका पहुंचने के लिए तो बहुत चीजों की आवश्यकता थी। सर्वप्रथम पैसे चाहिए, फिर वहां जाने के लिए टिकट चाहिए, हवाई जहाज हो या साधारण पानी में जाने वाला जहाज हो, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और उस समय भारत के बाहर जाने के लिए कई कानूनी कागजातों की आवश्यकता हुआ करती थी। जो बैंक आदि थे उनकी भी अनुमति चाहिए होती थी कि कहीं इस व्यक्ति के कोई कर्ज तो नहीं है बैंक में, तो उनकी अनुमति के लिए भी बहुत समय लगता था। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। एक बार वो वृंदावन में बैठे थे तो मथुरा के एक सज्जन वहां आए जिनका नाम था अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी से बात करते करते उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि अमेरिका जाके प्रचार करो, तो मैं भी जाना चाहता हूं। तो तुरंत अग्रवाल जी ने उत्तर दिया कि मेरा बेटा गोपाल पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में रहता है, मैं उसे कहूंगा, वो आपके लिए वहां भोजन और रहने की व्यवस्था करेगा, और जितने भी कानूनी जो आवश्यकताएं हैं कागजात आदि जो भरने होते हैं वो मैं सब कह दूंगा। प्रभुपाद जी ने ज्यादा कोई जोर देके ये बात नहीं कहा, बस बातों बातों में ऐसी बात कह दी प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बाद में लिखते हैं अपने किताबों में कि मैंने इतने जोर देकर नहीं कहा, बस यूं ही कह दिया, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से ले ली और मुझे भी नहीं पता चला कि कितनी गंभीरता से उन्होंने ये बात ले ली। फिर मैंने सोचा कि चलो जाते हैं बंबई और वहां जाके थोड़े किताबें बेचते हैं मेरे जो अभी छप गए हैं, और किताबें जो बेच के थोड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा जिसके बल पर फिर मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर सकता हूँ। धन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर अमेरिका वृंदावन छोड़ के बंबई चले गए। बंबई में कोई रहने का ठिकाना नहीं था तो एक धर्मशाला में रहे निशुल्क, और इधर उधर गए, जय हिंद कॉलेज है वहां, तो वहां के जो ग्रंथालय का देखभाल करने वाले सज्जन थे उनके पास गए कि आपके ग्रंथालय के लिए, विश्वविद्यालय के ग्रंथालय के लिए कुछ मेरे किताबें खरीदिए, तो उन्होंने खरीद लिए, एक सेट खरीद लिया। फिर उनसे निवेदन किया कि अन्य जगह भी आप मुझे ले जाइए, पुस्तकों का वितरण जब होगा तब कुछ धन मिलेगा, प्रचार भी होगा और धन मिलेगा जिसके कारण फिर मैं अमेरिका जा पाऊंगा। तो कई ग्रंथालयों में ले गए, आश्रमों में ले गए, दुकानों में ले गए जो ऐसे किताबें बेचते थे। कई जगह एक दो किताबें खरीदे, अन्यों ने कहा हम नहीं खरीदते, यहां से ऐसे कोई धार्मिक ग्रंथ खरीदता नहीं है। तो ऐसे फिर वो काफी निराश हो गए, फिर भी वापस दिल्ली चले आए। और दिल्ली आते ही उनको बहुत आश्चर्य की खबर मिल गई। इस दौरान 3-4 महीने बीत गए थे। छिप्पीवाड़ा नाम का एक स्थान है दिल्ली में, तो वहां राधा कृष्ण का मंदिर हुआ कर है अभी भी। तो वहां पे दिल्ली में जब प्रभुपाद जाते थे तो वहां पे रहा करते थे। बस एक साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ने उस मंदिर के व्यवस्थापन को संभाल लिया है। एक साल हो गया बस कि जहां प्रभुपाद जी रहा करते थे दिल्ली में, और वहां रह के अपने पत्रिका को का वितरण करते थे इत्यादि। तो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक पत्र मिला भारत सरकार से कि आपके लिए कोई पत्र आया है विदेश से कि आपकी वहां रहने की, अर्थात रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, अग्रवाल जी ने इतनी गंभीरता से हमारी बात को ले ली और अपने पुत्र से कह दिया। तो बाद में पता चला कि उनके पुत्र वो भी अच्छे सज्जन थे, परंतु ऐसे पिता अनेकों बार कहते थे कि ये कोई साधु है। और जो पिता थे मथुरा में रहने वाले, वो तो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में होना चाहिए। तो जब भी कोई साधु ऐसी कोई बात कहते कि हम विदेश जाना चाहते हैं, तो वो तुरंत अपने पुत्र को लिख देते पत्र कि अब कोई ऐसे कागज भेज दो वहां से इनके लिए। तो कई बार ऐसे गोपाल अग्रवाल भेज चुके थे पत्र, परंतु कोई साधु आई नहीं थे। तो उन्होंने भी गंभीरता से बात नहीं ली कि ये भी ऐसे ही साधु होंगे जो आएंगे नहीं, बस हम कागज भर के दे देंगे। कई अनुमतियां वगैरह चाहिए थी बैंक से, इधर उधर से। तो अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कह दिया, कर दिया, ऐसे चिट्ठी भेज दी। भारत सरकार से पत्र आया प्रभुपाद जी को, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, चलो पहला कदम हो गया। लेकिन फिर भी अब टिकट चाहिए, तो टिकट के लिए क्या करें। अब बंबई में एक कंपनी थी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, मतलब जहाजों की कंपनी थी, वो मालवाहक जहाज चलाती थी वो कंपनी। तो उसके जो उसको चलाने वाले एक महिला थी, ये बहुत सुसंस्कृत अच्छे वैष्णव परिवार की महिला थी, जिनका नाम था सुमति मुरारजी। तो सुमति मुरारजी ने पहले प्रभुपाद जी को थोड़ा धन, थोड़ा दान दिया था श्रीमद् भागवत को छापने के लिए। तो सुमति मुरारजी से वो थोड़े बहुत परिचित थे। तो कहे कि अब सोचा उन्होंने कि दोबारा मैं अब जाऊंगा बंबई, सुमति मुरारजी से मिलूंगा और निवेदन करूंगा कि आपके जहाज में मुझे कोई एक निःशुल्क टिकट आप दे दीजिए ताकि मैं अमेरिका जाऊं। जब आए तो उनके सहायक थे चौकसी, श्रीमान चौकसी जी थे। तो उन्होंने चौकसी जी से अपनी बात कही, तो चौकसी जी ने जाके सुमति मुरारजी से बात कही, तो संदेश वापस आया प्रभुपाद जी को कि नहीं नहीं स्वामी जी बहुत अभी वृद्ध हैं, अब इस समस्या में क्या जाएंगे अमेरिका। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं जाके समझाओ कि मुझे अभी श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना है। तो चौकसी जी दोबारा गए, तो सुमति मुरारजी ने कह के भेजा, अरे स्वामी जी से कहना कि भारत में रह के ही श्रीमद् भागवत का अनुवाद करे, वह अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ भी तो बहुत प्रचार कर सकते हैं भारत में, तो यहीं पर रहें, अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे अमेरिका में। तो फिर जब प्रभुपाद जी के पास चौकसी जी आए, तो प्रभुपाद जी ने फिर से कहा, अरे आपने मुझे आप ले जाओ, मैं समझाऊंगा। उन्होंने सोचा कि चौकसी जी शायद ठीक से नहीं कह रहे होंगे उनसे। तो फिर स्वयं प्रभुपाद जी मिले सुमति मुरारजी से। सुमति मुरारजी ने कहा कि स्वामी जी, आप इस आयु में, प्राय 70 की आयु हो गई है आपकी, इस आयु में अब कहाँ आप भारत छोड़ के जाएंगे, अब जहाज का प्रवास जो होता है, यात्रा, ये बहुत कठिनाई की होती है। और वहां जाके करोगे क्या, कहाँ रहोगे? यहाँ तो मेरे जो कर्मचारी हैं कहते हैं जो स्वामी जी जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी वहां पे, ऐसे मेरे कर्मचारी लोग कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, आप मुझे दे दीजिए टिकट। तो अंततः उनकी तीव्र इच्छा को देखकर सुमति मुरारजी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको टिकट दे दूंगी। तो बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद जी। तो इसके लिए तो समय लगना था, तो प्रभुपाद जी के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे। तो सिंधिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके रहने के लिए कोई आवासीय योजना बनाई हुई थी, तो वहां पे एक मकान था जिसमें प्रभुपाद जी को ठहराया गया। अब प्रभुपाद जी को के पास कुछ नहीं था, वैसे केवल किताबें थीं और कुछ था नहीं। तो उस मकान में कोई टेबल कुर्सी कुछ नहीं थी, बाद में टेबल कुर्सी आ गई होगी, वैसे और कुछ था नहीं। तो ना कोई रहने की व्यवस्था, कोई खाने की व्यवस्था कुछ। लेकिन वहां जब पहुंचे तो उस आवासीय स्थान में रहने वाले अन्य कर्मचारी थे, उन सब ने देखा कि अभी स्वामी जी आके रह रहे हैं और सुमति मुरारजी जी उनको अमेरिका भेज रही हैं। तो आसपास पड़ोस में रहने वाले जो लोग फिर आते गए उनके पास, उनसे कुछ कथा सुनने के लिए, फिर कोई सब्जियां ले आते, कोई कुछ चावल ले आते, कोई कुछ शक्कर ले आते, कोई क्या, ऐसे उनके पास इतना कुछ हो गया कि उन्होंने चौकसी जी से कहा कि इतना सब तो मुझे नहीं चाहिए। फिर भी चौकसी जी ने कहा, वो बड़े आदर से ले आ रहे हैं, जो अधिक है वो बांट लीजिए आप। तो जो अपने लिए आवश्यकता थी प्रभुपाद उतना प्रसाद ले लेते, बाकी उस कॉलोनी के बच्चों को बांट देते। और फिर वहां के लोग आके उनसे प्रवचन आदि सुनते, तो प्रभुपाद वहां बैठे फिर अपना अनुवाद भी करते। लेकिन प्रभुपाद जी ने सोचा कि केवल टिकट तो मिल जाएगा लेकिन धन भी तो चाहिए, वहां जाके कुछ खर्च करना होगा, कैसे रहूंगा मैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने थोड़े वहां के लोगों से निवेदन किया कि थोड़े धनी लोगों से मेरा पहचान करा दीजिए आप, ताकि मैं उनसे थोड़ा दान ले लूं। तो इधर उधर वो ले गए उनको, लेकिन लोग जो है थोड़े कभी कुछ दे देते, कोई लोग नहीं देते। तो इस तरह से काफी निराश होने का समय आ गया। प्रभुपाद जी आते वापस, और कभी कभी वहां के आसपास में रहने वाले लोग कहते कि अरे प्रभुपाद जी आ गए, वैसे काफी निराश से लग रहे थे और हमने उनको सांत्वना दिया कि कोई बात नहीं स्वामी जी, कल आपको कोई दान देने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। फिर कल अगले दिन जब वो लौट के आते, स्वामी जी कोई मिला आपको, कोई दान मिला? नहीं आज नहीं मिला, शायद श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी, शायद कल मिल जाएगा। हाँ हाँ स्वामी जी आपको कल मिल जाएगा। तो वो कहते कि ऐसे वो सांत्वना देते प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी वो कहते आके थोड़ा बैठ जाते खिड़की के पास, वृद्ध अवस्था में अब असफल हुए, कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर से अपने हौसले को बढ़ा के अपने टेबल पे बैठ जाते, फिर से अपना अनुवाद का कार्य शुरू कर देते। तो ऐसे कई दिनों तक चलता गया, और शाम को या कभी समय मिलता तो लोग आते, वो भागवत की कथा करना शुरू करते उनको। सुमति मुरारजी ने भी स्वयं कहा कि स्वामी जी आप मेरे घर में भी आके कुछ भागवत सुनाइए। तो प्रभुपाद जी वहां जाते और भागवत के ऊपर वो चर्चा करते। सुमति मुरारजी कहने लगी, वो आते थे हर शाम को यहाँ और संगीतमय ढंग से श्लोकों का उच्चारण करते, जैसे कि भागवत की कथा होती है वैसे, और फिर नाना अर्थ उस श्लोक के वो मुझे बताते। तो देरी होती गई, फिर जब चौकसी जी कहते कि हाँ अभी अभी होगा टिकट, अभी हो जाएगा, तो प्रभुपाद कभी कभी नाराज हो जाते, अरे कितना देर लगेगा, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, अब ऐसे समय निकालोगे तो न जाने कुछ भी हो सकता है। तो नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। फिर सुमति मुरारजी ने अंततः टिकट दे दिया और टिकट जलदूत नाम के एक जहाज का था जो कलकत्ता से रवाना होने वाली थी। अब प्रभुपाद जी के पास न तो कोई गर्म कपड़े थे न कोई वैसी व्यवस्था थी, तो सुमति मुरारजी ने चौकसी जी से कहा कि जाओ कुछ बाजार में ले जाओ स्वामी जी को, कुछ गर्म कपड़े वगैरह ले लो। तो 250 रुपये खर्च कराए, उन दिनों में 250 रुपया तो काफ़ी था, फिर भी सुमति मुरारजी ने अच्छे ढंग से खर्च कराए प्रभुपाद जी के लिए। तो कपड़े आदि ले लिए और फिर चौकसी जी से कहा कि आप ले जाओ उनको स्टेशन और रेलगाड़ी में बिठाओ। तो खैर प्रभुपाद जी अब तैयारी कर रहे थे और बड़े उत्साह से फिर रेल में बैठे कलकत्ता आ पहुंचे। कलकत्ता उनका जन्म स्थान था, कलकत्ता में वो बड़े हुए थे, उन्हीं का शहर था, उनका परिवार भी वहां था। फिर भी इस बार जब प्रभुपाद जी कलकत्ता आए, उन्हें लेने के लिए कोई नहीं था न उन्हें रहने के लिए कोई स्थान था, क्योंकि अब जब कलकत्ता वापस आए प्रभुपाद जी वो सन्यासी थे, तो अपने घर में तो जाके नहीं रह सकते, तो कहाँ जाते। तो उन्होंने एक पुराने पहचान वाले व्यक्ति को फोन किया जिनका नाम था शिशिर भट्टाचार्य। वो उनके निकट के भी कोई मित्र नहीं थे, बस एक बार कहीं लखनऊ में राज्यपाल के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ था तो उनसे मिले थे, तो ऐसी पहचान हो गई। तो बस उनसे उन्होंने निवेदन किया कि मैं कई दिनों तक यहाँ हूँ, 2 हफ्ते हैं, हवाई जहाज 2 हफ्ते बाद निकलेगी, हवाई जहाज नहीं जहाज 2 हफ्ते के बाद निकलेगी, तब तक मेरे लिए रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो कहा हाँ हाँ हम करा देंगे, और शाम के समय मैं कुछ प्रवचन आदि देना चाहता हूँ, कुछ प्रचार करना चाहता हूँ। तो शिशिर कुमार भट्टाचार्य उनको यहाँ वहाँ ले गए, प्रभुपाद जी थोड़े प्रचार करने लगे वहाँ पे, फिर वो उनको कोई समाचार पत्रों के दफ्तर में भी ले गए कि कहीं ऐसे समाचार पत्रों में खबर छापी जाए कि भक्तिवेदांत स्वामी स्वामी जी अब विदेश के लिए रवाना हो रहे हैं श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए। परंतु जैसे ये लोग सुनते, अच्छी तरह से सुन तो लेते, परंतु अगले दिन कोई खबर आती नहीं समाचार पत्र में, केवल एक बंगाली समाचार पत्र में छोटा सा खबर आ गया था, और किसी भी समाचार पत्र में खबर नहीं छापी गई। तो शिशिर कुमार भट्टाचार्य भी काफी तर्क करने वाले व्यक्ति थे, तो प्रभुपाद जी से लौटते लौटते अक्सर तर्क करते कि मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, आप जो आपने ऐसे कहा प्रवचन में, परंतु मेरी राय तो ऐसी है। तो प्रभुपाद जी कभी कभी नाराज हो जाते, अरे आपकी राय की क्या कीमत है, ना आपकी राय और मेरी राय का महत्व है, हमें शास्त्रों की बात माननी चाहिए, भगवान जो शास्त्रों में कहते हैं उस बात को हमें माननी चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी प्रचार करते रहे जोरदार, और फिर समय आया उनको जहाज में चढ़ने के लिए। जहाज में चढ़े, उस समय थोड़े लोग सिंधिया कंपनी से उनको साथ देने के लिए आए, उनके पुत्र वृंदावन देव वो भी उनके पास, उनको भी खबर पहुंची, वो भी पिताजी को छोड़ने के लिए आए। और जहाज के कर्मचारी देख रहे थे, अरे ये कौन आ रहे हैं, मालवाहक जहाज है, यहाँ पे एक कमरा तो है, परंतु ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अमेरिका जाके वो भी इतने वृद्ध हैं। तो स्वामी जी आए, सुमति मुरारजी ने उस जहाज के कप्तान जिनका नाम था अरुण पंडिया, उनसे कहा था कि स्वामी जी जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी अधिक मात्रा में सब्जियां फल आदि आप रख लेना, क्योंकि वो अन्य चीजें तो नहीं खाएंगे। तो अरुण पांड्या जी ने फिर अच्छी तरह से इकट्ठा करके रखा था। तो फिर जहाज शुरू हो गई, रवाना हुई कलकत्ता से, फिर श्रीलंका में कोलंबो, उस समय सिलोन नाम था देश का, वहां आके पहुंचे। आगे चल के कोचीन की ओर केरल में जहाज पहुंचने वाला था कि जन्माष्टमी का दिन आया। तो पहली बार अनेक वर्षों के बाद प्रभुपाद जी ने वृंदावन के बाहर जन्माष्टमी मनाई। हर साल इतने वर्षों तक, तो वो 10-12 वर्षों तक जब से उन्होंने वानप्रस्थ लिया था वो तो वृंदावन में रहा करते थे। अब देखिए वृंदावन छोड़ के अब कहां वो बीच समुद्र में जन्माष्टमी अकेले मना रहे थे। खैर उन्होंने प्रसाद आदि बनाया, श्री कृष्ण को भोग चढ़ाया, फिर जितने भी जहाज के कर्मचारी थे उन सबको प्रसाद खिलाया, कृष्ण प्रसाद। और उसके बाद वाले दिन उनका जन्मदिन था, तो किसी को पता नहीं था कि उनका जन्मदिन है, तो बस अकेले अपना जन्मदिन में वो अपने कार्यों में लगे रहे। और कोचिन में उनके जो 3 बड़े बड़े पेटियां थीं, जिनमें कि उनके 300 या 200 ऐसे सेट थे 3 ग्रंथों के जो कि उन्होंने छापे थे, वो बम्बई से आ पहुंचे, जहाज में अंदर आए, फिर आगे जहाज चली। आगे जहाज चली तो अरब देशों तक पहुंच गई। वहां पे प्रभुपाद जी को बीच बीच में समुद्र में चक्कर आदि आता, उल्टी आती। आप में से जो बीच समुद्र में जहाज में सफर कर चुके हैं आप जानते होंगे कि समुद्र में सफर करना कभी कभी आसान नहीं होता, क्योंकि समुद्र की लहरें आती हैं तो जहाज ऊपर नीचे जाता है, और इसलिए कई लोगों को उल्टियां होती हैं, सर में चक्कर आता है। तो प्रभुपाद जी को ऐसे शुरुआत से लेकर हुआ था, बहुत कष्ट हुआ प्रभुपाद जी को, फिर भी प्रभुपाद सहन करते रहे। और इजिप्त में पहुंचकर फिर कप्तान ने उनसे कहा कि चलो आपको सैर के लिए ले जाते हैं, आपके चक्कर वगैरह कम हो जाएंगे। तो जमीन पे पैर रखा तो थोड़ा उनको आराम लगा। अब लगातार अनेक दिनों तक वो जहाज में थे, तो फिर से जहाज की यात्रा शुरू हो गई। यूरोप पार करके अटलांटिक महासागर में जहाज आई, लेकिन इसके पहले प्रभुपाद जी को समुद्र में ही एक नहीं 2 हृदय के दौरे हो गए। बहुत कष्ट हुआ प्रभुपाद जी को, लेकिन वहां बीच समुद्र में कौन आता उनकी सहायता करने के लिए। पहले तो उल्टियां, चक्कर, खा नहीं सकते थे कुछ, ठीक से भोजन पका नहीं सकते थे ठीक से, और उसके ऊपर ये हृदय के दौरे 2 दिन में आए लगातार एक के बाद एक। और प्रभुपाद जी ने के मन में संशय हुआ कि क्या मैं अमेरिका पहुंच भी पाऊंगा। लेकिन उसी रात को श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए, और श्री कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हुए थे और एक नौके को वो चला रहे थे, और चलाते चलाते वो प्रभुपाद जी को हाथ पकड़ के कह रहे थे आओ मेरे साथ, डरो नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जब ये सपना देखा तो उनको पूरा विश्वास हुआ कि अब श्री कृष्ण के संरक्षण में मैं हूं, श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और फिर वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए। और उसके बाद जब अटलांटिक महासागर में जहाज पहुंची तो वहां महासागर का जल बहुत शांत हुआ, कोई तूफान नहीं आए, कोई तेज हवा नहीं थी, लहरें भी इतनी ऊंची नहीं थी, और बड़े आराम से जहाज अटलांटिक महासागर को पार कर चुकी। और फिर कप्तान पंड्या ने कहा, उनकी पत्नी ने भी कहा, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी कैप्टन पंड्या की पत्नी उनके साथ में थी, तो दोनों ने प्रभुपाद जी से कहा कि आज तक हमने अटलांटिक महासागर को इतना शांत नहीं देखा, तो जब जहाज लौटेगी अमेरिका से तो स्वामी जी आप भी हमारे साथ में आना, ऐसे शांत महासागर को हमने नहीं देखा है कभी। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे कि ये केवल श्री कृष्ण की कृपा से है, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि और ऐसे कुछ होता, तूफान आदि होते, लहरें ऊंची ऊंची होती, तो शायद मैं अभी जीवित नहीं रह पाता। तो केवल मेरी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं सारे अटलांटिक महासागर को शांत बनाया। आखिर ये सारी प्रकृति तो भगवान के निर्देशन में ही तो चलती है। तो फिर पहुंचे वहां पे। लेकिन हाँ, बंबई से आगे निकलने के पहले और भी उनके कोई कष्ट हुए। वैसे अमेरिका में जो स्पॉन्सर का पत्र है, एक महीना वो उनका देखभाल करने वाले थे गोपाल अग्रवाल, वो तो पत्र आ गया। उनको सुमति महाराजी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन अब पासपोर्ट चाहिए था, अमेरिका का वीजा चाहिए था, और पी फॉर्म चाहिए था जो बैंक आदि देते थे कि हाँ इनको हम बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं। तो पासपोर्ट तो मिल गया, वीजा भी मिल गया, क्योंकि सिंधिया कंपनी से उन्होंने दी थी कि हम इनको टिकट दे रहे हैं। गोपाल अग्रवाल जी का टिक पत्र भी था, परंतु पी फॉर्म में काफी कठिनाई हुई। स्टेट बैंक से उनको चिट्ठी नहीं मिल रही थी, बार बार जाते थे। वो कहते थे, स्वामी जी आपको तो पत्र मिला है किसी एक व्यक्ति से, यदि किसी संस्था के द्वारा आपको पत्र मिला होता हम तुरंत आपको फॉर्म दे देते थे, परंतु एक व्यक्ति है और इन्होंने तो केवल एक महीने के लिए आपके खाने पीने की व्यवस्था की है, और एक महीने के बाद फिर आप क्या करोगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर उनसे पूछा कि आपका निर्णय क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये पी फॉर्म आपको हम नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी निराश हो गए, अब ये नहीं मिलेगा तो हम विदेश नहीं जा पाएंगे। अभी टिकट मिल गया, वहां से पत्र मिल गया, पासपोर्ट मिला, वीजा मिला, लेकिन फिर भी नहीं जा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने हार नहीं मानी, उनके आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मिलाइए। उनका नाम था श्रीमान राव। तो राव जी के पास गए, और पहुंचते राव जी ने कहा, ठीक है स्वामी जी आपका हमने पास कर लिया है। तो फिर बड़े आनंद से प्रभुपाद जी वापस यहां पर बंबई में आ गए। तो खैर ये सब चीजें प्रभुपाद जी सोच रहे थे, और अमेरिका पहुंचने के थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले उन्होंने एक प्रार्थना लिखी, और वो प्रार्थना बड़ी सुंदर है, परंतु काफी लंबी है, इसलिए इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं या गा नहीं सकते हैं अभी। तो और इसमें प्रभुपाद जी श्री कृष्ण को अपना मित्र मानकर बोल रहे थे कि मित्र मेरी रक्षा आप करो। और जब जहाज अमेरिका पहुंची बॉस्टन शहर में पहले, तो प्रभुपाद जी ने वहीं पर एक और कविता लिखी। वैसे उनको जाना था न्यूयॉर्क शहर में, परंतु जहाज पहले पहुंची बॉस्टन, वहां से फिर न्यूयॉर्क वो जहाज ले जाने वाली थी। तो फिर बॉस्टन पहुंचते उन्होंने ये भजन लिखा, भजन की रचना की, जो हमें अभी हम अभी आपको सुनाएंगे। और फिर वहां अमेरिकन जो भी सरकार के कार्य हो, कानूनी कार्य थे, वो सब उन्होंने किए। और जैसे ही पहुंचे तो सिंधिया वालों पे, वो कप्तान के साथ में गए बॉस्टन शहर में, फिर वापस जहाज में आए, और फिर जहाज चली न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जब वो जहाज से निकले, प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि बाएं जाना है या दाहिने जाना है। मतलब प्रभुपाद जी कुछ नहीं जानते थे अमेरिका के बारे में, उनके जेब में केवल 40 रुपए थे, और 40 रुपए से उन दिनों में भी कितना हो सकता था, वो भी अमेरिका में $7 थे उनके पास। और अभी गोपाल अग्रवाल जी के साथ की ओर से कोई आएगा नहीं आएगा, कैसे पहचानेंगे। तो खैर न्यूयॉर्क में आए तो कोई व्यक्ति पर्यटक, कोई कंपनी थी, उनके द्वारा उनका कोई प्रतिनिधि आया, प्रभुपाद जी को पहले सिंधिया कंपनी के दफ्तर में ले गए। वहाँ सबसे पहले उस अधिकारी व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी वापसी का टिकट कब का कराऊं। तो प्रभुपाद जी ने 2 महीने बाद की वापसी का टिकट करा लिया कि आप बुकिंग कर लो। और फिर उनको उन्होंने गाड़ी में बिठा दी गोपाल अग्रवाल के घर में जाने के लिए। तो लंबी यात्रा थी, आखिर वहां पर वो पहुंच गए। एक महीने वहां पर वीजा उन्होंने बताया था, लेकिन वहां से फिर उनका प्रचार शुरू हुआ। थोड़े दिनों के लिए वहां रहे और वही गोपाल अग्रवाल उनके पुत्र के साथ यहाँ हमारे बंबई के रास बिहारी मंदिर में आए थे एक साल पहले या 6-8 महीने पहले। पहली बार वो आए, फिर वहां पे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया कि कैसे प्रभुपाद जी वहां आए थे। अब ये तो काफी बूढ़े हो गए थे गोपाल अग्रवाल, तो खैर वो याद कर रहे थे कि प्रभुपाद जी पहली बार आए, कितने सरल थे, कैसे उनके परिवार के सदस्यों के साथ में बैठते, उस समय उनका बच्चा बहुत छोटा था, वो भी उनके साथ खेल लिया करते थे, और कितनी कठिनाई थी उनकी परिस्थिति में कि जब उन्होंने जाके प्रचार का कार्य शुरू किया। तो बॉस्टन जब पहुंचे तो बस यही दिन था, वैसे तिथि तो यही थी, 17 सितंबर 1965। उस समय प्रभुपाद जी की आयु 69 की थी, और ऐसे अवस्था में प्रभुपाद जी के पास न कोई धन न कोई ज्यादा सहायता थी। वहां से शुरू करके प्रभुपाद जी ने केवल 12 वर्षों में क्या चमत्कार कर दिया, 108 मंदिर हो गए, हजारों की संख्या में शिष्य हो गए, कितने सारे ग्रंथों को उन्होंने छाप लिया, एक विश्वव्यापी संस्था उन्होंने स्थापित कर ली, बल्कि और भी कई संस्थाएं जैसे कि बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, ऐसे भी संस्थाओं की स्थापना की। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों की जो ग्रंथ है उनका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ, और जोरदार प्रचार सारे विश्व भर में शुरू हो गया। और केवल कई वर्षों में, 4-5 वर्षों में ही हरे कृष्ण आंदोलन इतना फैला कि सारे विश्व भर में सारे सरकार जो है वो घबरा गए कि ये लोग सारे विश्व को के सरकार को ले लेंगे, यही सारी दुनिया को चलाएंगे शायद, सरकार इनका होने वाला है जिस तरह से ये लोग बढ़ रहे हैं। इतनी तेजी से, इतनी तीव्रता से प्रचार उन दिनों में चल रहा था। उस जमाने भक्त लोग तो आग में थे, आग जैसे प्रचार उनका ऐसे चलता था, दिन रात मेहनत करते थे, खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। क्या चमत्कार हुए उन वर्षों में, और प्रभुपाद जी भी कोई कम नहीं थे, रात को 12 बजे तक केवल 3-3 घंटे सोते, कभी 2 घंटे कभी 1 घंटा, रात को 12 बजे उठ के अनुवाद के कार्य जारी रखते मंगल आरती तक, फिर दिन भर अपना प्रचार आदि चलते रहता। ऐसे परिस्थिति से प्रभुपाद जी ने संस्था चालू की, और इसका फल हम आज चख रहे हैं। हमारे लिए सब कितना आसान है, बना बनाया मंदिर है, आराम से आके प्रसाद मिलता है, कथा मिलती है, विग्रह है, सारी व्यवस्थाएं है, संघ मिलता है, इतने सारे बड़ी संख्या में लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। जब प्रभुपाद जी गए वहां, कौन था उनके लिए? गोपाल अग्रवाल का घर जिस दिन छोड़ दिया, उसके बाद तो न्यूयॉर्क में आए, और न्यूयॉर्क शहर का क्या कहना। सुमति मोरारजी ने तो पहले से कहा था, स्वामी जी देखिए कम से कम भारत में आपकी कोई कीमत देंगे, लोग तो सम्मान करते हैं आपकी, आप सन्यासी हैं, स्वामी हैं, यहाँ सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोग श्रद्धालु हैं, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अमेरिका में जाएंगे वहां कौन कीमत देगा आपकी, कौन सुनेगा आपको, कोई सहयोग नहीं करेंगे आपकी, बहुत कठिनाई होगी आपकी आपके लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान यदि चाहें तो अवश्य सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो कितनी अटूट श्रद्धा प्रभुपाद जी की थी। तो खैर बॉस्टन में पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी ने ये एक भजन लिखा जिसका नाम है मार्किने भागवत धर्म। बंगला भाषा में है ये, परंतु काफी आसान है समझना। हम इसको हर पंक्ति को गा के हम आपको संक्षेप में उसका अर्थ बताएंगे। बंगला में मार्किन मतलब अमेरिका, तो मार्किने भागवत धर्म मतलब अमेरिका में जाके भागवत धर्म या भक्ति के पद का प्रचार करना। तो ये प्रभुपाद जी की कविता थी जो कि उन्होंने बोस्टन अमेरिका पहुंचते पहुंचते ही लिखी। शायद इसी तिथि पर 1965 में उन्होंने इस भजन को लिखा।
बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेर प्रति किला गिया नीले हेता करो एबे गति।
वो कहते हैं बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, इस अधम के प्रति प्रभुपाद जी अपनी तरफ कह रहे हैं, अपने आप को अधम कह के कह रहे हैं कि मुझ अधम के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी कृपा की है। की लागिया नीले हेथा करो एबे गति, अभी आप मुझे यहाँ पर ले आए हैं, अभी मुझे पता नहीं कि किस लिए आप यहाँ लाए हैं, लेकिन जैसा चाहे आप मेरे साथ कर लीजिए।
आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, नहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने।
आछे किछु कार्य तब, आपका कोई कार्य अवश्य होगा, एई अनुमाने, ये मेरा अनुमान है, अन्यथा नहे केनो आनी बाने एई उग्र स्थाने, नहीं तो ऐसे उग्र स्थान में आप मुझे क्यों ले आते। आपका कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए मुझे आप ले आए हैं।
रजस्तमो गुणे एरा सबई आछन्न, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न।
यहाँ के जो लोग हैं रजस और तमोगुण से आच्छादित हैं, पूरी तरह से ढके हुए हैं। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, अब कृष्ण कथा से ये लोग क्या प्रसन्न होंगे। कृष्ण कथा सुनने के लिए तो थोड़ी सात्विक बुद्धि चाहिए। ये ऐसे राजसिक और तामसिक लोग भले क्या मेरी कृष्ण कथा को समझेंगे।
तबे जदि तब कृपा होई अही तुकी, सकली संभव होई तुमी से कौतुकी।
तबे जदि तब कृपा होई अही तुकी, फिर भी आपकी अहितुकी कृपा यदि हो इन पर, सकले संभव होए तो ये सब संभव हो सकता है। ऐसे राजसिक और तामसिक लोग भी मेरे से कृष्ण कथा सुन के समझ पाएंगे। आखिर तुम्ही सही कौतुकी, आप तो महान योगी हैं, आप योगेश्वर हैं, कोई भी चमत्कार आप कर सकते हैं।
की भावे बुझाले तार बुझे सही रस, एतो कृपा करो प्रभु करो निज बस।
की भावे बुझाले तार बुझे सही रस, किस तरह से मैं इन लोगों को आपके संदेश को समझाऊंगा। एतो कृपा करो प्रभु करो निज बस, ये कृपा आप कर लीजिए प्रभु कि आप मुझे आपके शरण में रखिए और इनको मेरी बातें जो है वो समझाइए।
तुम्हारा इच्छाए सब होई माया वश, तुम्हारा इच्छाए नाश माया रा परश।
आपकी इच्छा से सभी माया के नियंत्रण में है। तुम्हारी इच्छाए सब होई माया वश,
तो आपकी इच्छा से ही वो माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं।
यदि आप चाहो कि ये लोग माया से छूटे तो वैसे हो सकता है।
तबो इच्छा होए जदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुमार।
तबो इच्छा होए जदि, यदि आपकी इच्छा हो तादेर उद्धार, तो उनका उद्धार निश्चित है।
बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुमार,
ते आपकी जो कृष्ण कथा है फिर ये लोग अवश्य समझ पाएंगे, आपकी कृपा होगी तो।
भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर हुईया सुने जोदि काने बार बार।
ये भागवत की जो कथा है जो मैं अब कहने जा रहा हूं इनको, ये तो आपका अवतार है। श्रीमद् भागवत तो साहित्य रूप में भगवान का अवतार है। तो मैं इस भागवत कथा को जो करने जा रहा हूं, जो धीर लोग हैं वो बार बार इसको सुन के समझ पाएंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बार बार सुनने से वो लोग धीर बन जाएंगे, इसको समझ पाएंगे। फिर प्रभुपाद जी यहां भागवत के 5 श्लोक बोलते हैं, जो कि पहले स्कंद के 2 अध्याय में है, श्लोक 17 से लेकर 21। शृण्विताम् स्वकथा कृष्णः, पुण्य श्रवण कीर्तनः, हृद्यन्तःस्थ भद्राणि, विधुनोति सुहृत्सताम्। ये कृष्ण कथा जो है ये अपने आप में ही पुण्य है, और जो लोग इसे सुनते हैं उनका अंतःकरण समस्त प्रकार के अभद्र चीजों से मुक्त हो जाता है या स्वच्छ हो जाता है। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्यं भागवत सेवया, नित्य रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, और कृष्ण के शुद्ध भक्त जो व्यक्ति भागवत है उनकी सेवा नित्य रूप से करने से, जो हमारे हृदय में अभद्र चीजें हैं वो प्राय समाप्त हो जाती हैं, और फिर हमारे हृदय में नैष्ठिक की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तदा रजस्तमो भावः, कामलोभादयश्च ये, चेतैतैरनाविद्धम्, स्थितं सत्वे प्रसीदति। फिर जब ऐसे हम भागवत का श्रवण करते रहते हैं, तदा उस समय फिर रजस तमो भावः काम लोभादयश्च ये, ये जो रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले जो अनर्थ हैं, जैसे काम लोभ इत्यादि, चेत एतैर अनाविद्धम, फिर ये सब नष्ट हो जाएंगे। स्थितम सत्वे प्रसीदति, फिर व्यक्ति शुद्ध सत्व अवस्था में, सात्विक अवस्था में स्थित हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो, भगवत भक्ति योगतः, भगवत तत्व विज्ञानम्, मुक्त संगस्य जायते। भगवत भक्ति योगतः, तो ऐसे भगवान के भक्ति योग के द्वारा एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाता है, और ऐसे अवस्था में भगवत तत्व विज्ञानम, बड़े वैज्ञानिक ढंग से भगवान के तत्व का साक्षात्कार होता है। मुक्त संगस्य जायते, फिर भौतिक आसक्तियों से हम पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। फिर क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय में जो भौतिक गांठ है, जो हमें भौतिक संसार से बांध के रखती है, वो फूट जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, फिर सारे जो संशय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो कर्म बंधन है वो भी कट जाता है और फिर आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ऐसे प्रभुपाद जी भागवत के श्लोकों के द्वारा भजन में लिख रहे हैं कि ऐसे ही इन लोगों के साथ होगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जो जिस श्रृंखला का वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है, वो उन लोगों के साथ होता है जो श्रद्धा से, भक्ति से भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं।
रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार हृदय अभद्र सब घुचि बेतहार।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से रजस तमो गुण के प्रभाव से ये लोग मुक्ति पाएंगे। हृदय अभद्र सब घुचि बेतहार, फिर जो भी अभद्र चीजें इनके हृदय में हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे।
की करे बुझावो कथा बड़ो से चाही क्षुद्र आमी दीन हीन कौन शक्ति नाही।
किस तरह से मैं इन लोगों को कृष्ण कथा समझाऊंगा हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो क्षुद्र जीव हूं, मैं दीन हूं, हीन हूं और मुझ में कोई शक्ति नहीं है।
अथच एने छो प्रभु कथा बोली बारे जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो एई बारे।
जो भी हो प्रभु, आप मुझे ले आए यहां कुछ कहने के लिए। अब यदि आपकी इच्छा हो तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं।
अखिल जगत गुरु वचन सहित अमार अलंकृत करु बार क्षमता तुम्हार।
हे प्रभु, आप ही अखिल जगत गुरु हैं। यदि आप चाहें तो मेरे शब्दों को इस तरह से अलंकृत कर सकते हैं कि मेरे शब्दों का प्रभाव इन व्यक्तियों के हृदय के ऊपर पड़ेगा। अपने आप में मेरी कोई क्षमता नहीं है, आपकी शक्ति की आवश्यकता है।
तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सबार शोक दुख जे गुजीपे।
आपकी कृपा होने पर, तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हवे, फिर मेरी कथा शुद्ध हो जाएगी।
सुनिया सबार शोक दुख जे गुजीपे,
फिर इस कथा को सुनने से इन लोगों की जो दुख हैं, क्लेश हैं, वो सब मिट जाएंगे।
आनिया छो जोदि प्रभु अमर न चाहते ना चाहो ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते कष्टेर पुत्तली जथा ना चाहो से मते।
प्रभुपा जी कहते हैं आनिया छे जोदि प्रभु अमर ना चाहते, कि प्रभु आप मुझे लाए हैं तो नाचने के लिए, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ श्रीमते, जैसे आप चाहते मुझे आप नचाइए, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूं।
काष्ठेरा पुत्तली जाथा नाचाओ श्रीमते,
मैं आपके हाथों में कर कमलों में एक कठपुतली हूं, जैसे आप नचाओगे मैं नाचूंगा।
भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो।
मुझ में कोई भक्ति नहीं है, न कोई ज्ञान है, केवल आपके नाम में थोड़ा विश्वास मेरा है। अब मेरे गुरु भाइयों ने मुझे भक्ति वेदांत नाम दिया है, तो इस नाम को आप चाहे तो सार्थक कर सकते हो। ऐसी प्रार्थना इसी तिथि पर 1965 में बॉस्टन शहर में अमेरिका में पहुंचकर जहाज में बैठे बैठे प्रभुपाद जी ने लिखी। तो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो, मेरे भक्ति वेदांत नाम को आप सार्थक कीजिए। तो क्या कृष्ण भगवान ने सार्थक किया? किस बढ़िया ढंग से किया अब हम सब जानते हैं, और आगे चल के इतिहास के ग्रंथों में भी आएगा कि कैसे कृष्ण भगवान ने भक्ति वेदांत ये नाम सार्थक कर दिया उनके लिए। फिर आगे चल के प्रभुपाद जी के कष्ट कम नहीं हुए, फिर भी प्रभुपाद जी ने हौसला खोया नहीं। तरह तरह की कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी प्रचार करके उन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया कि आज 40 साल बाद या 50 साल बाद विश्व में लाखों भक्त हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण श्री कृष्ण भावनामृत संघ में, 500 से अधिक केंद्र हैं, उनमें से अनेक मंदिर भी हैं और थोड़े से छोटे केंद्र हैं, शायद भारत में न जाने कितने हैं। और ये क्यों? क्योंकि केवल एक व्यक्ति जो कि 69 वर्ष की आयु में इतना साहस कर पाए, इतनी श्रद्धा उनकी थी, इतनी भक्ति उनकी थी कि मेरे गुरु का आदेश का पालन करना ही है, मुझे अमेरिका में जाके अंग्रेजी भाषा में भागवत का प्रचार करना है, बस उनकी निष्ठा के कारण ये सब चमत्कार हो पाया। उनकी निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी कृपा प्रदान कर दी, इसलिए उनकी पदवी दी जाती है कृष्ण कृपा मूर्ति, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ी सूचनाएं हैं और आने वाले बद्रीनाथ यात्रा के लिए थोड़े और विशेष कार्य हैं, इसलिए हरे कृष्ण।